एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी। दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम जिनकी ज्ञान गोष्ठी करने जा रहे हैं उनका नाम सुनते ही जहन में आता है नोबेल पुरस्कार क्वांटम फिजिक्स और शायद बोंगो ड्रम बजाता हुआ एक खुश मिजाज चेहरा। हम बात कर रहे हैं रिचर्ड फिलिप्स फाइनमैन की, जीवन काल 1918 से 1988। लेकिन क्या वो सिर्फ एक नोबेल विजेता भौतिक विज्ञानी थे? हमारे स्रोतों को देखा तो पता चलता है वो इससे कहीं ज्यादा थे। एक बेमिसाल विचारक, एक कमाल के किस्सा गो, और हाँ, जैसा उनकी एक मशहूर किताब का नाम है, श्योरली योर जोकिंग मिस्टर फाइनमैन, मतलब एक ऐसा इंसान जो जिंदगी और विज्ञान दोनों को पूरी संजीदगी और शरारत के साथ जीता था। आज भी उनका जिक्र
हाँ, और इतनी दिलचस्पी से क्यों होता है ये सवाल? ये बहुत वाजिब है। फाइनमैन की शख्सियत में ना एक अजीब सा चुंबकीय आकर्षण था जो सिर्फ उनके वैज्ञानिक काम तक ही सीमित नहीं था, बिल्कुल नहीं। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उनके दिमाग की परतों को खोलें, उनके बौद्धिक साहस को, उनके उस अनोखे अंदाज को समझें, और ख़ास तौर पर उनकी वो जो कहानी कहने की कला थी ना, उस पर गौर करें, जिसने विज्ञान जैसे मुश्किल विषय को न सिर्फ आम लोगों के लिए खोला बल्कि उसे दिलचस्प भी बना दिया।
हमारे पास उनके जीवन पर, उनके काम, उनकी सोच पर कुछ बेहतरीन स्रोत हैं, और हम इन्हीं के जरिए फाइनमैन की दुनिया की गहराई में उतरेंगे। ये सिर्फ जानकारी नहीं होगी बल्कि उनकी सोच के साथ एक बातचीत की कोशिश होगी।
अच्छा, तो चलिए पहले उस जमाने की बात करते हैं जिसमें फाइनमैन की सोच पनपी। 1918 में जन्म, मतलब पहला विश्व युद्ध बस खत्म हो रहा था और दुनिया, पूरी दुनिया बदल रही थी, और भौतिकी की दुनिया, अरे वहां तो जैसे भूचाल आया हुआ था।
हाँ बिल्कुल, न्यूटन के सदियों पुराने नियम वो पूरी कहानी नहीं बता पा रहे थे। आइंस्टाइन का सापेक्षता सिद्धांत, रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के वो नए हैरतअंगेज विचार, वो तो भौतिकी की नींव हिला रहे थे।
फाइनमैन इसी इंकलाबी माहौल में जवान हो रहे थे।
बिल्कुल, और उनका पेशेवर जीवन वो तो 20वीं सदी के सबसे नाटकीय मोड़ों के बीच ही परवान चढ़ा। दूसरा विश्व युद्ध, फिर मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जहां वो एक नौजवान तेज तरार वैज्ञानिक के तौर पर शामिल हुए, फिर परमाणु बम का बनना और उसकी विभीषिका, और उसके बाद वो लंबा शीत युद्ध का दौर। ये वो समय था जब विज्ञान अचानक सरकारों के लिए बहुत अहम हो गया। एक ऐसा रिश्ता बना जिसमें बड़ी संभावनाएं भी थीं और बड़े खतरे भी। सोचिए ना, लॉस एलामोस में ओपेनहाइमर, एनरिको फर्मी, हांस बेथे, इन जैसे दिग्गजों के साथ काम करना। ये सिर्फ वैज्ञानिक ट्रेनिंग नहीं थी, ये दुनिया को, इंसानियत को समझने का एक असाधारण अनुभव था।
इसमें फाइनमैन पर गहरा असर डाला होगा यकीनन।
और युद्ध के बाद अमेरिका में हाँ, विज्ञान को खूब बढ़ावा मिला, इसमें कोई शक नहीं। यूनिवर्सिटीज को पैसा मिला, साइंटिस्ट का सम्मान बढ़ा, लेकिन साथ ही वो शीत युद्ध की वजह से विज्ञान पर एक दबाव भी था। राष्ट्रीय सुरक्षा, हथियारों की दौड़। फाइनमैन का जो सबसे मशहूर काम है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स यानी QED पर, वो तो बुनियादी विज्ञान था। मतलब ब्रह्मांड कैसे काम करता है, इसे समझने की एक खालिस जिज्ञासा,
विशुद्ध जिज्ञासा। हाँ,
मगर ये काम एक ऐसी दुनिया में हो रहा था जो विज्ञान के फौरी और अक्सर खौफनाक नतीजों पर ज्यादा ध्यान दे रही थी।
ये विरोधाभास उनकी जिंदगी में लगातार बना रहा।
हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि जब बाद में, खासकर 80 के दशक में, जब कार्ल सेगन जैसे लोगों ने, मतलब विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया, तब फाइनमैन का वो पुराना किस्से सुनाने वाला अंदाज एकदम सही साबित हुआ।
उनकी किताबें बेस्ट सेलर बन गए।
अरे वाह।
ऐसा नहीं था कि लोग विज्ञान से ऊब चुके थे, शायद उन्हें उस भाषा और उस नजरिए की तलाश थी जो फाइनमैन ने पेश किया। विज्ञान को एक इंसानी गतिविधि के तौर पर देखना, जिसमें गलतियां भी होती हैं, मजाक भी होता है और हैरत भी। उनका लेखन अकादमिक दीवारों को लांघकर सीधा लोगों के दिलों और दिमाग तक पहुंचा।
अच्छा,
तो इस माहौल से निकलकर अगर हम उनके निजी सफर को देखें तो ये जिज्ञासा आई कहाँ से? कहते हैं उनके पिता मेलविल का बड़ा हाथ था, वो सेल्समैन थे, कोई वैज्ञानिक नहीं, पर वो फाइनमैन को रटना नहीं, सोचना सिखाते थे, चीजों को देखना, सवाल पूछना। एक किस्सा है ना कि वो बताते थे, चिड़िया का नाम जानने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि वो उड़ती कैसे है, वो करती क्या है।
हाँ, ये बहुत मशहूर है।
क्वींस न्यूयॉर्क में उनका बचपन रेडियो ठीक करने, घर के लिए चोर अलार्म बनाने जैसी चीजों में बीता। मतलब
चीजों को खोलकर उनके पुर्जे समझकर ही उन्हें मजा आता था और ये हाथों से करके सीतने की आदत ये उनके साथ हमेशा रही। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT गए, फिर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जहां उन्होंने जॉन आर्चिबल व्हीलर जैसे महान भौतिक विज्ञानी के साथ डॉक्टरेट की। व्हीलर खुद भी बड़े कल्पनाशील वैज्ञानिक थे तो शायद गुरु चेला की खूब बनी होगी।
हाँ, हो सकता है।
फाइनमैन की प्रतिभा इतनी जाहिर थी कि बहुत कम उम्र में ही उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए चुन लिया गया जो उस वक्त अमेरिका का सबसे गुप्त और अहम वैज्ञानिक मिशन था।
लॉस अलामोस के वो साल, वहाँ फाइनमैन की शख्सियत के कई रंग दिखते हैं ना।
बिल्कुल,
एक तरफ वो मुश्किल गणितीय गणनाएं करने वाले जीनियस थे, टीम लीडर थे।
बिल्कुल,
दूसरी तरफ वो पूरे कैंपस के सबसे बड़े मस्खरे थे।
ताले खोलने में उस्ताद।
हाँ, सेफ क्रैकिंग। अंतिम वो शादी की थी कि उन्हें लाइलाज टीवी है। वो पास के एल्बकर्क के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। फाइनमैन हर हफ्ते उधार की गाड़ी लेकर उनसे मिलने जाते थे। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत मार्मिक अध्याय है जो उनके हसमुख चेहरे के पीछे की संवेदनशीलता दिखाता है।
बिल्कुल, युद्ध खत्म होने के बाद कुछ समय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में बिताकर वो 1950 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलटेक आ गए और फिर वहीं के होकर रह गए। कैलटेक ही वो जगह बनी जहां उन्होंने क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स QED पर अपना वो काम पूरा किया जिसके लिए उन्हें 1965 में नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन वो सिर्फ रिसर्च में ही नहीं डूबे रहे, वो एक कमाल के शिक्षक बने जिनके लेक्चर आज भी किताबों की शक्ल में जिंदा है।
हाँ, फाइनमैन लेक्चर्स।
उन्होंने बोंगो ड्रम बजाना सीखा, शौकिया तौर पर कला सीखी, ब्राजील गए और वहां की सांबा संस्कृति में ऐसे रमे कि कार्निवल परेड में भी हिस्सा लिया। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो जिंदगी को भरपूर जीने वाले इंसान थे।
और फिर आता है 1986 का वो वाकया जिसने उन्हें आम जनता के बीच एक नायक जैसा बना दिया, स्पेस शटल चैलेंजर दुर्घटना।
हाँ, वो जांच कमीशन।
हाँ, उसकी जांच के लिए बने रॉजर्स कमीशन में फाइनमैन भी शामिल थे। जब नौकरशाही और नासा के अधिकारी मतलब गोलमोल बातें कर रहे थे, फाइनमैन ने टीवी कैमरे के सामने एक सीधा साधा प्रयोग किया।
वो बर्फ के पानी वाला।
हाँ, एक ग्लास बर्फीला पानी लिया और उसमें रबर का ओ रिंग डुबोकर दिखाया कि कैसे ठंड में रबर अपनी लचक खो देता है।
बस इसी वजह से शटल के रॉकेट बूस्टर में लीक हुआ था।
ये महज एक प्रयोग नहीं था, ये सच बोलने की हिम्मत का, जटिल समस्या को सरलता से समझाने की उनकी काबिलियत का प्रतीक बन गया।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो सिर्फ सिद्धांतों में नहीं बल्कि चीजें असल में कैसे काम करती हैं, इसमें गहरी दिलचस्पी रखते थे। उनका जीवन कैंसर से एक लंबी लड़ाई के साथ समाप्त हुआ 15 फरवरी 1988 को, लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी और मौत का सामना भी उसी बेबाक जिज्ञासा और यथार्थवादिता से किया जिससे वो ब्रह्मांड के रहस्यों का सामना करते थे।
अब बात करते हैं उनके लेखन की, जो उनकी वैज्ञानिक विरासत जितनी ही अहम है। सबसे पहले तो जिक्र आता है द फाइनमैन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स का, 1964 में छपे। ये कैलटेक में अंडर ग्रेजुएट छात्रों को दिए गए उनके लेक्चर्स का संग्रह है। ये कोई आम टेक्स्ट बुक नहीं है, है ना?
सही कहा, बिल्कुल नहीं। ये किताबें ये इस तरह से लिखी गई हैं जैसे फाइनमैन खुद आपसे बात कर रहे हों। इनमें गहरी भौतिकी है, गणित है, लेकिन साथ ही एक नजरिया है, इतिहास है और सोचने का एक तरीका सिखाने की कोशिश है। वो सिर्फ फॉर्मूले नहीं बताते, वो ये बताते हैं कि वैज्ञानिक सोचते कैसे हैं, प्रकृति के नियमों को खोजते कैसे हैं। आज भी दुनिया भर में भौतिकी के छात्र और शिक्षक इन लेक्चर्स को एक खजाने की तरह मानते हैं। ये आपको भौतिकी से इश्क करना सिखा सकते हैं, सच में।
लेकिन जो किताब उन्हें घर घर में ले आई वो थी 1985 में छपी श्योरली योर जोकिंग मिस्टर फाइनमैन, उनके जीवन के किस्सों का संग्रह जिसे उनके ड्रम बजाने वाले साथी राल्फ लेटन ने सालों तक रिकॉर्ड की गई बातों के आधार पर तैयार किया था। इस किताब ने तो जैसे धमाका ही कर दिया।
हाँ, क्योंकि इसने एक वैज्ञानिक की जो बनी बनाई छवि थी ना, उसको तोड़ दिया। इसमें फाइनमैन एक शरारती, जिज्ञासु, ताले खोलने वाले, बोंगो बजाने वाले, आर्ट सीखने वाले, जिंदगी का मजा लेने वाले इंसान के तौर पर सामने आते हैं। लोग हैरान थे कि क्या नोबेल पुरस्कार विजेता ऐसे भी हो सकते हैं। इस किताब ने फाइनमैन को एक कल्चरल आइकन बना दिया, सिर्फ वैज्ञानिक समुदाय में नहीं बल्कि आम लोगों के बीच भी। इसने अनगिनत युवाओं को ये दिखाया कि विज्ञान उबाऊ नहीं बल्कि रोमांचक हो सकता है और वैज्ञानिक भी दिलचस्प इंसान हो सकते हैं।
उनकी दूसरी आत्मकथात्मक किताब व्हाट डू यू केयर व्हाट अदर पीपल थिंक उनकी मौत के बाद 1988 में आई। इसमें दो हिस्से बहुत मार्मिक हैं, एक उनकी पत्नी आर्लीन के साथ उनकी प्रेम कहानी और दूसरा चैलेंजर जांच का उनका अपना बेबाक नजरिया। ये किताब उनके चरित्र की गहराई दिखाती है, एक तरफ गहरा भावनात्मक लगाव, दूसरी तरफ सच के लिए किसी भी सत्ता से टकरा जाने का साहस।
आया जैसे क्यूईडी, द स्ट्रेंज थियरी ऑफ लाइट एंड मैटर 1985, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स भौतिकी के सबसे सफल सिद्धांतों में से एक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा गणितीय और अजीब है। ये बताता है कि रोशनी, फोटोन और पदार्थ जैसे इलेक्ट्रॉन क्वांटम स्तर पर कैसे बातचीत करते हैं। फाइनमैन ने इस बेहद जटिल विषय को बिना ज्यादा गणित के अपने बनाए फाइनमैन डायग्राम्स और रोजमर्रा की मिसालों से समझाया।
ये फाइनमैन डायग्राम्स ये क्या चीज है, सुनने में बड़ा दिलचस्प लगता है।
कौन से कण एक दूसरे के पास आए, उन्होंने आपस में क्या, जैसे एक फोटोन बदला और फिर किधर चले गए। देखने में बहुत सरल लगते हैं कुछ लाइनें और बिंदु, लेकिन इन्होंने जटिल गणनाओं को बहुत आसान बना दिया। ये फाइनमैन की एक और देन थी, मुश्किल चीजों को देखने का एक नया सहज तरीका खोजना। तो क्यूईडी किताब में उन्होंने इन डायग्राम्स का इस्तेमाल करके आम पाठक को क्वांटम दुनिया की एक झलक दिखाई। ये उनके संवाद करने की अद्भुत क्षमता का सबूत है।
तो कुल मिलाकर उनका साहित्यिक योगदान क्या माना जाए?
मेरे ख्याल से उनका सबसे बड़ा साहित्यिक योगदान यह है कि उन्होंने वैज्ञानिक जीवन को एक रोमांचक सफर की कहानी बना दिया। उन्होंने दिखाया कि विज्ञान सिर्फ लैब में होने वाला काम नहीं, बल्कि दुनिया को समझने का एक नजरिया है, एक जुनून है। उनकी भाषा सीधी, सरल, मजाकिया और ईमानदार थी। उन्होंने विज्ञान को एलीट दायरे से निकालकर आम इंसान की बातचीत का हिस्सा बना दिया। उन्होंने वैज्ञानिक को एक जीते जागते बहुआयामी इंसान के तौर पर पेश किया।
अब आते हैं उनकी विरासत और प्रभाव पर। जाहिर है दो स्तर हैं, वैज्ञानिक और
सांस्कृतिक।
हाँ,
वैज्ञानिक स्तर पर देखें तो उनका काम आज भी भौतिकी की नींव का हिस्सा है। क्वांटम मैकेनिक्स को समझने का उनका वो पाथ इंटीग्रल नजरिया, ये विचार कि एक कण एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि सभी मुमकिन रास्तों से गुजरता है, ये अपने आप में क्रांतिकारी था।
सच में
सभी रास्ते बारे में हमारी सबसे सटीक थ्योरीज में से एक है।
और सांस्कृतिक प्रभाव, वो तो शायद और भी ज्यादा व्यापक है।
हाँ बिल्कुल, वो 20वीं सदी के वैज्ञानिक जीनियस का चेहरा बन गए, लेकिन आइंस्टीन की तरह थोड़े दूर के रहस्यमयी नहीं बल्कि ज्यादा करीब के शरारती दुनियादार। उनकी किताबों ने जो फाइनमैन परसोना बनाया वो जिज्ञासु, ईमानदार, मजाकिया, सत्ता पर सवाल उठाने वाला,
किसी की परवाह न करने वाला,
हाँ व्हाट डू यू केयर व्हाट अदर पीपल थिंक वाला वैज्ञानिक। इसने हजारों लाखों छात्रों को विज्ञान पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसने ये सोच बदल दी कि एक वैज्ञानिक कैसा होता है या हो सकता है।
उनका वो फलसफा कि सबसे पहला सिद्धांत है कि खुद को मूर्ख मत बनाओ
और तुम ही वो इंसान हो जिसे मूर्ख बनाना सबसे आसान है।
हाँ, ये बात तो सिर्फ विज्ञान पर ही नहीं जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती है ना।
बिल्कुल, उनकी बौद्धिक ईमानदारी, हर दावे पर सवाल उठाने की आदत, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना कह रहा हो, ये सोच भौतिकी से निकलकर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, शिक्षा, यहाँ तक कि कला और दर्शन तक में सराई जाती है। उनका मानना था कि ये सोचने का तरीका, ये वैज्ञानिक रवैया किसी भी समस्या को समझने और हल करने में मदद कर सकता है।
और क्या, ये कहना सही होगा कि आज जो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने वाले लेखक या कम्युनिकेटर हैं, जैसे ब्रायन कॉक्स या नील डिग्रास टाइसन, उन पर फाइनमैन की छाप दिखती है।
निश्चित रूप से, फाइनमैन ने रास्ता दिखाया कि कैसे जटिल वैज्ञानिक विचारों को व्यक्तिगत कहानियों, किस्सों और एक एक आकर्षक अंदाज में पेश किया जा सकता है। आज भी जब हम पॉडकास्ट सुनते हैं, ब्लॉग पढ़ते हैं या यूट्यूब पर विज्ञान की वीडियो देखते हैं, जहाँ मुश्किल चीजों को आसानी से समझाया जाता है, जहाँ स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी जाती है और जहाँ खोजने की खुशी का जश्न मनाया जाता है, वहाँ कहीं ना कहीं फाइनमैन की विरासत जिंदा है।
फाइनमैन के कहे हुए कुछ वाक्य तो जैसे सूत्र वाक्य बन गए हैं, वो उनकी सोच का आईना है। आपने एक जिक्र किया, पहला सिद्धांत है कि आपको खुद को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए और आप ही वो व्यक्ति हैं जिसे मूर्ख बनाना सबसे आसान है।
जी,
ये उनके 1974 के कैल्टेक भाषण से। और ये वैज्ञानिक और शायद इंसानी ईमानदारी का मूल मंत्र है।
हाँ, और चैलेंज रिपोर्ट में उनका वो कथन भी उतना ही दमदार है, एक सफल तकनीक के लिए वास्तविकता को जनसंपर्क पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। आज के जमाने में जहां स्पिन और इमेज मैनेजमेंट इतना हावी है, ये बात कितनी सटीक लगती है। ये संस्थागत आत्मधोखे पर एक जबरदस्त टिप्पणी है।
उनका एक और विचार मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। मेरे पास ऐसे प्रश्न हो जिनका उत्तर ना दिया जा सके, बजाय ऐसे उत्तरों के जिन पर प्रश्न न उठाया जा सके। ये अनिश्चितता को स्वीकार करने और किसी भी तरह की कट्टरता, चाहे वो वैज्ञानिक हो या कोई और, पर सवाल उठाने की उनकी हिम्मत दिखाता है। ज्ञान की यात्रा कभी खत्म नहीं होती।
और वो बात जो उन्होंने अपने पिता से सीखी थी, किसी चीज का नाम जानने और किसी चीज को जानने के बीच का अंतर, मैंने बहुत पहले ही सीख लिया था। I learned very early the difference between knowing the name of something and knowing something. ये सतही जानकारी और गहरी समझ के फर्क को उजागर करता है। सिर्फ परिभाषा रट लेना काफी नहीं, चीज कैसे काम करती है ये समझना जरूरी है।
और शायद उनकी पूरी सोच का सार इस वाक्य में है। विज्ञान ज्ञान का एक निकाय होने से कहीं ज्यादा सोचने का एक तरीका है।
Science is a way of thinking much more than it is a body of knowledge.
यानी विज्ञान सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं, बल्कि सवाल पूछने, सबूत तलाशने, शक करने और सीखने की एक निरंतर प्रक्रिया है।
तो फाइनमैन हमें यही सिखाते हैं, जिज्ञासा बनाए रखो, सवाल पूछो, ईमानदार रहो, खासकर खुद से, और सीखने का मजा लो। ये सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं, शायद जिंदगी जीने के लिए भी जरूरी सबक है।
आज की दुनिया जहाँ जानकारी का एक सैलाब है, जहां सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है, वहां फाइनमैन का यह सिद्धांत खुद को मूर्ख मत बनाओ कितना कितना प्रासंगिक लगता है। नहीं,
बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए ये सोचने का एक बिंदु हो सकता है कि फाइनमैन के जीवन या उनके विचारों का कौन सा पहलू उन्हें सबसे ज्यादा छूता है या सोचने पर विवश करता है। क्या सच में वो वैज्ञानिक सोच, जिसे फाइनमैन इतना महत्व देते थे, हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे फैसलों और हमारी समझ को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है? ये एक खुला सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।
रिचर्ड फाइनमैन की इस ज्ञान गोष्ठी में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये बातचीत दिलचस्प और उपयोगी रही होगी।
समापन वर्णन, नरेटर। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।